ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई जी। हम सभी बाबा के तपस्वी बच्चे हैं। लौकिक डिग्री का क्या रखा है। हम सभी बाबा के तपस्वी बच्चे हैं। यहां किस लिए आए हैं आप सभी? तपस्या करने। भाग्य विधाता बाबा हमारा भाग्य बना रहे हैं। शिव बाबा को दाता, पिधाता, वरदाता कहा जाता है। दाता है, सब कुछ दे देता है, ज्ञान, गुण, शक्तियां। विधाता है, विधि विधाता, भाग्य विधाता। हमें भाग्य बनाने की विधि भी बता देते हैं और भाग्य भी बना देते हैं हमारा, और वरदान भी दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं। परंतु साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी हमारा भाग्य विधाता है। ब्रह्मा भी भाग्य बांटते हैं, तो दोनों बाप दादा हमारे भाग्य विधाता है, तो हम कितने खुश नसीब हैं। तो भाग्य बनाने का आधार, हम सभी आए हैं सारे कल्प का भाग्य बनाने। 21 जन्म तो मालामाल रहेंगे ही, लेकिन कलयुग के अंत तक भी देखिए दुनिया में जितने दुख है, हम सभी बाबा के बच्चे कितने सुखी हैं उस हिसाब से देखा जाए। तो सारा कल्प श्रेष्ठ भाग्य बनाने का आधार अभी का इस संगम युग का थोड़ा सा समय है। इस समय जो अपना भाग्य बना लिया, जैसे बिजनेस में जो होंगे जानते होंगे, सारे साल में एक सीजन आता है जिसमें खूब सेल होता है, खूब उस बिजनेस का क्लाइमेक्स होता है उस समय। तो उस समय जो बिजनेसमैन बिल्कुल अटेंशन देकर बिजनेस में अच्छी तरह से कमाई कर लेता है, सारा साल बैठ के खाता है। ठीक इसी तरह ही संगम युग सारे कल्प में एक ही समय है भाग्य बनाने का, बाकी और किसी युग में कभी भी भाग्य नहीं बना सकते। तो स्वयं भाग्य विधाता आए हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो भाग्य कैसे बनेगा, इसका आधार क्या है? भाग्य बनाने का आधार क्या है? त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग से ही भाग्य बनता है, तपस्या से ही भाग्य बनता है, सेवा से ही भाग्य बनता है। इसलिए बाबा हमें त्याग, तपस्या, सेवा सिखाते हैं। सेवा से ही भाग्य बनता है, जितनी सेवा करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा, लेकिन सेवा का आधार भी तपस्या है, त्याग है। जो त्याग नहीं करता है वो तपस्या नहीं कर सकता है, जो तपस्या नहीं कर सकता है वो सेवा भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे बाप दादा ने शुरू में हमारी दादियों को पहले त्याग कराया। 14 साल तक बिल्कुल कटअप, दुनिया से किसी का पत्र भी पढ़ने नहीं दिए, किसी मित्र संबंधियों का शकल तक देखने नहीं दिए, दुनिया से कटअप करके बिल्कुल बाबा ने 14 साल तक क्वारंटाइन में रखा दादियों को। फिर तपस्या कराया, 14 साल तपस्या कराया बाबा ने। फिर 14 साल के बाद तब दादियां हमारी बड़ी हो गई थी, तो बाबा ने कहा तुम सभी शिव शक्तियां हो, जाओ समग्र विश्व में अभी सेवा करो। तो भाग्य बनाने का आधार सेवा है, सेवा का आधार तपस्या है, तपस्या का आधार त्याग है। तो आप सभी बाबा के बच्चे यहां तपस्या करने आए हो, है ना? नहीं, सेवा तो अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हो, लेकिन यहां तपस्या करके विशेष चार्ज होने के लिए आए हो। तो तपस्या में सबसे बड़ा मुख्य बाधक क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा मुख्य बाधक है नींद, आलस्य। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान अर्जुन को कहते हैं हे परंतप, परंतप बना परम तपस्या करने वाला, हे गुड़ाकेश, गुड़ा का मना निद्रा, निद्रा का ईश मन मास्टर, हे निद्राजीत, हे परम तपस्या करने वाले। जो तपस्या करना चाहता है उसका एक बहुत बड़ा विघ्न है आलस्य, अलबिलापन, निद्रा। इसका रामायण में बहुत सुंदर प्रतीक है। बाबा आए हैं हम सभी को विकारों पर विजय प्राप्त कराने। जो यहां संपूर्ण पवित्र बनेगा, निर्विकारी बनेगा, भविष्य में भी उतना ऊंच पद पाएगा। तो विकारों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं बन सकता है। तो भाग्य बनाने का आधार संपूर्ण निर्विकारिता। तो विकारों को अवगुण कहा जाता है, अवगुणों को विकार कहा जाता है। मनुष्य जीवन में हम दुखी होते हैं अपने अवगुणों से, सुखी होते हैं अपने सद्गुणों से। आज सभी के अंदर अवगुण भरे पड़े हैं जिसके कारण सभी मनुष्य दुखी हैं। भगवान संसार में आकर सबको सुखी कैसे बनाते हैं? सभी के अवगुणों को कैसे मिटाकर हम सद्गुण जीवन में भरें वो सिखाते हैं। सभी मनुष्य जब सद्गुण संपन्न हो जाएंगे ये संसार फिर से स्वर्ग हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो अवगुणों को विकार कहा जाता है। अब मुख्य रूप में पांच विकार है, हम सभी जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और उसका प्रतीक कौन है? कौन है? रावण। तो रावण पांच मुख्य विकार का प्रतीक है। लेकिन रावण को मारने से पहले दिखाते हैं रामायण में रावण के 100,000 बच्चे थे और 125,000 पोतरे थे। राम जी ने पहले वो सब उनके अंश वंश को मारा, बाद में उसका भाई कौन था? कुंभकर्ण को मारा। फिर उसके बाद इंद्रजीत मरा, इंद्रजीत का बड़ा बेटा था। फिर जाके रावण मरा। इसका आध्यात्मिक रहस्य है। आप ये पांच विकार रावण को ऐसे नहीं मार सकते हैं। पहले छोटे 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 हो तो इजी है, सहज है मारना। लेकिन रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण को जब तक नहीं मारते हैं रावण नहीं मरता है। और उसका बड़ा बेटा जो है इंद्रजीत, और दूसरा नाम उसका था मेघनाद। क्यों? क्योंकि मेघ जैसा गर्जन करता था, जैसे जोर से बादल एकदम फटता है, जोर से आवाज आता है तो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो कुंभकर्ण तो आलस्य का प्रतीक है, लेकिन मेघनाद किसका प्रतीक है जानते हो? भय का प्रतीक है। भय दिखाना, डराना। भय भी एक विकार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य और भय, ये 7 मुख्य विकार है। और हमारे अंदर जो 7 आत्मा के अनादि गुण है, ज्ञान पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद और शक्ति, ये 7 गुणों से हम ये 7 विकारों को खत्म कर सकते हैं। तो बाद में बताऊंगा आपको, परंतु कहने का मतलब है संपूर्ण निर्विकारी होने के लिए हमको रावण को मारने से पहले ये आलस्य भय को भी खत्म करना पड़ेगा। उसको इंद्रजीत, मेघनाद को इंद्रजीत भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तपस्वी बनने के लिए जैसे आलस्य को खत्म करना पड़ेगा, इसी प्रकार इंद्रजीत भी बनना पड़ेगा। बाबा हमें ऐसे ही विश्वराज्य अधिकारी नहीं बना रहे हैं। तपस्या द्वारा पहले निद्राजीत बनना पड़ेगा, फिर प्रकृतिजीत बनना पड़ेगा, फिर कर्मेंद्रजीत बनना पड़ेगा, फिर मनजीत बनना पड़ेगा, फिर मायाजीत बनना पड़ेगा, फिर जगतजीत बनना पड़ेगा। तो निद्राजीत, प्रकृतिजीत, कर्मेंद्रजीत, मनजीत, मायाजीत, जगतजीत। तो बाबा हमें इतना श्रेष्ठ भाग्य का जो अधिकारी बना रहे हैं, पहले हमें आलस्य पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। आलस्य और अलबेलापन, कुंभकर्ण इसकी निशानी है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कुंभकर्ण, आप रामायण अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, एक ऋषि थे विश्रवा ऋषि। उनके 3 पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ने तपस्या की, और रावण ने तपस्या किया मैं अमर बनूंगा, इसलिए वो लक्ष्य लेकर वो तपस्या किया। कुंभकर्ण ने तपस्या किया मैं इंद्र बनूंगा। सभी तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। रावण जी को पूछे कि तेरे तपस्या से मैं संतुष्ट हूं, क्या वर मांगना चाहता? तो कहता मैं अमर बनूंगा, अमर बनना चाहता हूं। तो कहता अमर तो कोई नहीं बन सकता है, जब आप सीता जी को चोरी करोगे तब आप मरोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम जो टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं आलस्य, तो कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था, लेकिन तपस्या तो कर ही रहा था, लेकिन बेचारा नींद का वशीभूत होकर तपस्या करता था। वो इंद्र बनने का, विश्व का मालिक स्वर्ग का राजा इंद्र कहा जाता है। इंद्र बनने के लिए तपस्या तो करता था और सोचता था इंद्र बनूंगा, इंद्र बनूंगा, इंद्र बनूंगा, और तपस्या करके इंद्र इंद्र निंद्रा निंद्रा होता था, उसको नींद का वश हो जाता था। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहते हैं बस क्या वर मांगना चाहते हो मांगो, तो नींद का वशीभूत में इंद्र बोलने के बजाय निंद्रा निंद्र निंद्रा बोला, तो उसको 6 महीना का सोने का वरदान मिल गया। तो हम बाबा के बच्चे तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं नींद के वशीभूत होके राजयोग के बदले निद्रा योग तो नहीं कर रहे, क्योंकि यहां दुनिया में जैसे भजन कीर्तन में आपको एक हंसी की बात सुनाता हूं। एक सन्यासी, बहुत एक बड़ा पंथ का कोई उनके बहुत बड़े गुरु थे, तो नेक्स्ट सक्सेसर वो शरीर छोड़ दिए तो ये हेड बन गए संस्था के, लेकिन उनको ये सब नहीं अच्छा लग रहा था। जब ज्ञान मिला वो बाबा के बच्चे बन गए, बाबा के बच्चे तो बन गए। तो एक दिन आके मुझे कहते हैं श्रीमंत भाई अमृत वेले नींद आती है क्या करें। तो मैं बोला आपको तो भक्ति का संस्कार है, आप सवेरे सवेरे उठना और अपने चेले चिमटों को भजन कीर्तन करना, नहीं तो आदत है आपको, जल्दी उठने का आदत है, आपको क्यों नींद आती है। जो लोग भोगी हैं वो 8 बजे उठते हैं, उनको जल्दी उठना मेहनत है, आप तो आप सन्यासी थे आपको तो आदत है। कहते आप नहीं समझते हो, हम उठते थे लेकिन क्या करते थे, झांझ कीर्तन लेके मृदंग लेके लगे रहते थे, उसमें नींद नहीं आती थी। और यहां तो आप कहते चुपचाप बैठ जाओ तो फिर थोड़े समय बाद नींद आती है, क्या करें हम। तो यहां बाबा के बच्चे तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन जरा भी सुस्ती, जरा भी आलस्य, जरा भी मिक्स ना हो, एकदम अलर्ट, तो ही कहेंगे राजयोग, तो ही भाग्य बनेगा, नहीं तो इंद्र बनने के बदले निंद्रा का वरदान मिल जाएगा, है ना। नहीं तो इसलिए हम देखें कि हम आलस्य के शिकार तो नहीं है। आलस्य एक मोटा विकार है, 6ठा विकार है आलस्य, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर आलस्य, फिर भय। तो आलस्य एक 6ठा विकार है लेकिन ये सबसे मोटा विकार है। अगर किसके जीवन में कितने भी विशेषताएं क्यों ना हो लेकिन वो अगर आलस्य के वशीभूत है वो तो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, तो इसलिए सब कुछ 0 हो जाता है। हमारा भाग्य खोने का मुख्य कारण आलस्य है। तो आलस्य जिसको होगा वो कोई कार्य करेगा ही नहीं, कल करूंगा, परसों करूंगा, देखता हूं, अभी नहीं, बाद में करूंगा, टालता जाएगा। अलबेलापन आलस्य का छोटा भाई है। अलबेलापन बना करेगा काम लेकिन धीरे धीरे आराम से करेगा, 1 घंटा का काम को 10 घंटा लगाएगा, उसको कहते हैं अलबेलापन। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, कोई दायित्व तो बोध नहीं होगा उसको। इसलिए छोटे बच्चे कभी ये करते नटखट तो हम कहने में क्या कहते हैं, बच्चे है ना, अलबेले हैं, उनको दायित्व तो बोध नहीं होता, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए आलस्य और अलबेलापन ये दोनों हमारे हमें भाग्यहीन बनाने का ये विघ्न, सबसे बड़ा विघ्न है। तो जो आलस्य अलबेलापन के शिकार होंगे वो उनकी क्या निशानियां होगी। जो आलस्य अलबेलापन जिनमें होगा ना वो क्या कहेगा, आज करे जो कल करो, कल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्यों करते हो, जीना है अभी वर्षों, उसका डायलॉग ये है। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे होंगे क्या कहेंगे, कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करोगे कब। तो इसलिए वो टालते रहेंगे, तो करेगा ही नहीं तो उसका भाग्य कैसे बनेगा। इसलिए जो आलसू होता है वो भाग्यहीन होता है, वो कभी भी राम पसंद नहीं बन सकता है, प्रभु पसंद नहीं बन सकता है, वो आराम पसंद है, आराम पसंद जीवन। वो कभी राजा ही उसको प्राप्त नहीं हो सकता है, रजा ही पसंद है ना, उसको राजा ही पसंद नहीं है, रजा ही पसंद है, क्या उठना है, चलो सो जाओ थोड़ा। तो राम पसंद नहीं आराम पसंद है, और रजाई पसंद नहीं रजाई पसंद है। और वो हमेशा सुस्ती करेगा, कर्मठ कभी नहीं हो सकता है। जिसके अंदर आलस्य अलबेलापन का बीमारी है वो कर्मठ नहीं हो सकता है, एक्टिव नहीं हो सकता है। और जैसे कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 6 महीना उठता था, जब उठता था एकदम खाता था खाली, हर खाली खाता था फिर सो जाता था। तो ऐसे ही जो आलस्य अलबेलापन के शिकार होंगे वो खाते रहेंगे सोते रहेंगे। इसलिए कहावत है सो बता है सो पावत है, पावत है ना, नहीं अच्छा, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो यहां नींद को त्याग करना पड़ेगा, सबसे पहले अमृत वेला उठना पड़ेगा। मम्मा बाबा सारे जीवन काल में एक दिन भी कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। हमारी दादियों को हमने देखा है सालों साल, यहां मधुबन में 30 साल हो गया, कैसे बीत गया सचमुच एक सपना जैसा लगता है। 30 दिन पहले आए थे ऐसा लगता है। हमारी दादियों को हम एकदम नजदीक से देखा, 100 साल उम्र में भी हमारी जानकी दादी एकदम 4 बजे मना चार मना तैयार स्टेज पे आके योग कराएगी। हमारे प्रकाशमणि दादी जी को देखा, सबको देखा, विश्वरतन दादा को देखा, जगदीश भाई जी को देखा। हमारी लच्छू दादी कहती थी हमारे ब्रह्मा बाबा सारे जीवन काल में 2 बजे के बाद बाबा को कभी सोया हुआ नहीं देखा। जगदीश भाई कहते थे मैं जब आके मधुबन आता था दिल्ली से, मुझे जो कमरा मिला था बाबा का कमरा एकदम दिखाई देता था, 2 बजे सिर्फ बाबा का लाइट चलता था। मैं पहले तैयार होके नहा धो के तैयार होके रेडी रहता था, जैसे बाबा का लाइट कमरा का लाइट चलता था मैं आके बाबा को गुड मॉर्निंग करता था। बाबा मुझे एकदम पावरफुल दृष्टि देके वरदान देते थे। 35 साल से ज्यादा मैं 2 बजे से पहले उठा हूं। जगदीश भाई जी ने जितनी किताब लिख दी है वो किताब सारा कोई बिरला को पढ़ा होगा, आप में से सारी किताब जो पढ़े हो हाथ उठाओ, सारी किताब कोई बिरला पढ़ पाएगा अपने जीवन में। रोज अमृत वेले उठ के बाबा को याद करके लिखते थे, इसलिए तो बाबा ने उनको वरदान दिया। तो भाग्य बनाने का आधार तपस्या है, नींद को त्याग करना पड़ेगा। तो जो आलस्य का शिकार होगा तो भाग्यहीन होगा नेचुरली, और कर्मठ जीवन नहीं होगा तो इसलिए क्या करेगा, हमेशा खाएगा पिएगा सोएगा और तो फिर मोटू होता जाएगा। इसलिए कुंभकर्ण को कैसे दिखाते हैं कितना मोटू कितना पेटू, रावण को इतना पेटू नहीं दिखाते हैं लेकिन कुंभकर्ण को इतना मोटू और पेटू दिखाते हैं। क्योंकि जो आलसू होगा वो खाएगा पिएगा सोएगा मोटू होगा, जो मोटू होगा सब प्रकार की बीमारियां शुरू होगी। जो मोटा होता है 10 किलो भी वेट अगर शरीर का बढ़ गया, जितना होना चाहिए उससे अगर 10 किलो भी बढ़ गया, हमारे हार्ट को एक दिन में 1000 लीटर खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है। तो हार्ट का बेचारा का क्या हाल होगा सोच लो, 1000 बीमारियां आएगी, 1000 बीमारियां। जो तपस्वी होंगे वो कभी इतने मोटे मोटे नहीं होंगे, तो इसलिए शारीरिक बीमारियां सब आएगी। कभी भी वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य बोध नहीं होगा उसको, इसलिए कभी वो लोक पसंद नहीं हो सकता है, प्रभु पसंद भी नहीं लोक पसंद भी नहीं, किसी का ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा, उस विश्वास का पात्र नहीं बन सकता है। और जो आलस्य का शिकार होगा, जैसे कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब नरक का द्वार है। आप श्रीमद् भगवद गीता अगर पढ़ेंगे भगवान ने कहा है कामात संजायते क्रोध क्रोधात भवति सन्मोह सन्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसात प्रणश्यति, अर्थात काम से क्रोध क्रोध से मोह मोह से बुद्धि भ्रष्ट फिर विरास। तो इस प्रकार जो आलस्य का शिकार होगा वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को खोएगा, वो पश्चाताप करता रहेगा, अरे ऐसा हो गया अरे मिस हो गया, वो गाड़ी हमेशा उसकी छूट जाएगी। कोई भी जीवन में अपॉर्चुनिटी मिस करेगा कोई भी, क्योंकि लेट उठेगा लेट खाएगा लेट हर बात में लेट सब बात में लेट करेगा। तो इसलिए हमारी स्पिरिचुअलिटी का एक मुख्य निशानी है पंक्चुअलिटी। बाबा शार्प पहुंच जाते थे क्लास में, एक दिन भी मिस नहीं, शार्प डट। सारे जीवन काल में बाबा एक दिन ही मुरली में खाली 2 मिनट की कितने मिनट लेट आए, और आके बाबा हाथ जोड़ के ऐसे सामने झुक के बच्चों के सामने क्षमा याचना की। बाबा ने कहा बच्चे आई एम सॉरी, आज ये बूढ़ा बैल थोड़ा सो गया था। बाबा ने बताया भी, बाबा होल नाइट जागरण करके सकास दिए, सेवा किए रात्रि भर, तो क्लास आने से पहले थोड़ी सी झपकी लगी। ऐसे नहीं कि बाबा रात भर सोए रहे और मुरली में भी लेट आए। तो अगर आलस्य अलबेलापन हमारे अंदर है तो क्या होगा, पंक्चुअलिटी नहीं हो पाएंगे, एकदम डट टाइम ना डट टाइम। आप देखना विदेश में, आप जापान जाओ अमेरिका जाओ, 5 मिनट भी अगर आप ऑफिस में लेट आते हो तो सॉरी कम नेक्स्ट डे, एंट्री नहीं होगा। तो कोई भी कहीं भी देखना, भारत में कोई लेट आता है तो सब कहते हैं कि इंडियन टाइम है ना, इंडियन टाइम। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी का मुख्य निशानी है पंक्चुअलिटी, एकदम टाइम माना टाइम डट टाइम। इसका आलस्य का शिकार जो होगा वो कभी पंक्चुअली हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जीवन में हमें आलस्य अलवेलापन को त्याग करें। कैसे इस पर विजय प्राप्त करें, कैसे विजय प्राप्त करें, क्या तप क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा ताकि इस पर विजय प्राप्त हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम निद्राजित नहीं बनते हैं तपस्या हो ही नहीं सकता है। पहले निद्राजित बन के तपस्या करेंगे, फिर प्रकृति जीत बनना पड़ेगा। सर्दी गर्मी, सर्दी जुखाम खांसी बीमारी कुछ भी हो, शरीर भी तो प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है। कुछ भी हो जाए हमारी तपस्या का बाधक कोई ना बन सके, तो ही हम लगन में मगन हो सकेंगे, तो ही बाबा से वरदान शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ही हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला कदम है आलस्य का त्याग करना, अर्थात निद्राजित बनना। जो बाबा के बच्चे एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करते हाथ उठाइए, वाह बधाई हो। बाकी जो मिस करते हैं, आप देखो मधुवन आए हो, यहां से दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाओ आज से अमृत वाला मिस नहीं होगा कभी भी। क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है, जानते हैं बाबा ने कहा है जो बच्चे सवेरे सवेरे स्नान पानी आदि कर बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं वही बच्चे जाके राजा बनेंगे। बाबा ने वरदान दिया है बच्चे तुम सवेरे सिर्फ मुझे प्यार से याद करो, तुम अमृत वाला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो इसलिए आलस्य और अलबेलापन से मुक्त होना चाहते हैं, श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है नींद को त्याग करना, अमृत वेला पावरफुल बनाना। इसका आधार क्या है, इसका आधार आप अगर रात्रि को जल्दी सोएंगे तो ही तो जल्दी उठेंगे ना। आजकल टीवी देखते देखते रात को सोते सोते 12 बजा देते हैं, तो कैसे उठ पाएंगे सवेरे, कैसे उठेंगे, तभी उन्हें मिनाथ जैसा सुस्ती होगी, निंद्रा निंद्रा करते रहेंगे। तो इसलिए जल्दी सोना बाबा के नियम। आप देखना मधुबन में हमारे जो दिनचर्या का चार्ट बड़ा बोर्ड डिस्प्ले किया गया है हिस्ट्री हॉल के पास, आप देख लेना 10 माना बस। कोई भी मीटिंग होती थी कुछ होती थी तो हमारी परदादी कहती थी 10 करो बस, 10:30 तक सो जाना चाहिए। अब एक पावदा ने कहा ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक, तो ही आप 3:30 बजे उठ सकते हो, नहीं तो कैसे उठोगे, सवाल नहीं उठता है। उठेंगे तो भी वो पावरफुल मेडिटेशन नहीं होगा। सवेरे सवेरे बाबा के साथ एकदम लगन में मगन हो जाना, देहवान खो जाए, अशरीर हो जाओ, बिल्कुल बाबा में एकदम कंबाइंड हो जाओ, सिर्फ शक्ति लाइट हाउस माइट हाउस हो जाओ, फिर चार्ज हो जाओ, फिर सारा दिन देखो कैसे एक्टिव रहेंगे, कितना चुस्त फुर्त रहेंगे, कैसे उड़ते रहेंगे। तो आलस्य अलविलापन से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पहले देखो मुझे क्या करना है, क्यों क्या बनना है। जीवन का लक्ष्य पक्का है, अगर पक्का है तो वो लक्षण भी आएगा, नहीं तो नहीं। मुझे सत्ययुग में जाके स्वर्ग में जाना है और श्रेष्ठ भाग्य मेरा बनाकर उच्च पद का अधिकारी बनना है, ये लक्ष्य है। क्योंकि एक हंसी की बात सुना रहा हूं, एक भाई कहता था कि क्यों इतना मेहनत करना है, 2 रड़ियां तो मारनी है, मैं समझ नहीं पाया। मैं बोला कि धोरणिया मरनी है क्या मतलब, इतना मेहनत करके इतना पुरुषार्थ करना उठना क्या जरूरी है, दो रड़ियां तो मारनी है। बोला कि क्या मतलब, बोला कि देखो स्वर्ग में सदा बहारी मौसम होगा, सबके पास सोने का महल होंगे, सबके पास पुष्पक विमान होगा, वहां तो कोई आतंकवादी होंगे नहीं, कोई कोरोना फरोना तो होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, वहां सब सुखी होंगे। वहां राजा बनो या प्रजा बनो कोई बनो क्या मतलब है, सब तो सुखी होंगे ना। और वहां जाके लक्ष्मीनारायण के राज दरबार के सामने विश्व महाराजन आ रहे हैं, जब सवेरे सवेरे दरबार में आएंगे विश्व महाराजन आ रहे हैं, और दरबार पूरा हो गया जब जाएंगे विश्व महाराजन जा रहे हैं, दो रड़ियां तो मारनी है क्या करना है, वहां तो कोई उपद्रव करेंगे नहीं, कोई आएंगे नहीं, ऐसा लक्ष्य है क्या आपका, दो रड़ियां मारने से संतुष्ट है ऐसा लक्ष्य है। तो जैसा लक्ष्य होगा ऐसा लक्षण होगा। सबसे पहले बाबा कहते हैं मेरे बच्चे राजा बनो, पुरुषार्थ करो राजा बनो। अगर वहां विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो यहां स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा, कर्मेंद्रजीत बनना पड़ेगा, मनजीत मायाजीत बनना पड़ेगा, निद्राजीत बनना पड़ेगा। तो जैसा लक्ष्य ऐसा लक्षण होगा। पहले लक्ष्य को पक्का करना, नहीं बाबा अभी लास्ट समय, याद रहे अभी नहीं तो कभी नहीं, लास्ट समय है, कब विनाश हो जाए कोई भरोसा नहीं, शरीर का क्या ठिकाना है, कब कब शरीर छूटेगा कोई बता सकता है, दुनिया का विनाश जब हो ना हो पता नहीं, लेकिन खुद कब क्या होगा क्या भरोसा, अभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं, हमेशा याद रखना है, अब घर जाना है, ये लास्ट मौका, अभी संगम का एक पल खोया तो वर्ष वर्ष खोया, अभी नहीं किया तो भाग्य सोया रहेगा बिल्कुल, ये स्लोगन बाबा का याद रखना हमेशा, अब नहीं तो कब नहीं, जो करना है अभी करूंगा, अब भी करना है मुझे, तो आलस्य से मुक्त हो सकते हैं। लक्ष्य सामने रहे, बाबा की बातें याद रहे, अमृत वेला का महत्व रखें, और अमृत वेला के लिए पहले तो जल्दी सोना पड़ेगा, रात्रि भोजन हल्का करना पड़ेगा। जो तपस्वी होगा वो स्वल्पाहारी होता है, कुंभकर्ण जैसा खाएंगे तो कुंभकर्ण जैसा सोना भी पड़ेगा, ज्यादा अनाज खाने से नींद आती है, अनाज चावल चपाती गेहूं की चीजें, चावल की चीजें, बाजरा रागी जवार मकई ये सबको अनाज कहा जाता है, ये सब कम खाएं, ज्यादा से ज्यादा साग सब्जियां वेजिटेबल्स दूध फल ये सब तपस्वी का आहार ये होना चाहिए। अगर ज्यादा खाएंगे 10 रोटियां खा लेंगे रात को तो हजम करने के लिए भी इतना सोना पड़ेगा, रात्रि भोजन हल्का करना पड़ेगा, कम खाएंगे तो ही जाके उठ पाएंगे, और जल्दी खाना है क्योंकि हमारे पेट में कम से कम 6 घंटा लगता है भोजन को हजम करने के लिए, और जब तक पेट में अन्न है आप बैठेंगे तो भी आपको अलर्टनेस नहीं आएगा, क्योंकि सारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइवर्ट होता है, उस समय ब्रेन को जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, इसलिए आपको अलर्टनेस नहीं आएगा, पेट खाली होना चाहिए, 6 घंटा लगता है पेट खाली होने के लिए, इसलिए अगर आप 8 मैक्सिमम 9 बजे तक खा लेते हैं तो 3 बजे के बाद आपको फ्रेश लगेगा ही, इसलिए बाबा ने जो नियम रखा है 3:30 बजे, मैं नहीं कहूंगा 2 बजे उठो सभी, क्योंकि हर एक का दिनचर्या अलग है, ड्यूटी अलग है, सारे दिन किसी को भागम दौड़ी का काम है, फिजिकली मेहनत करना पड़ता है, तो हर एक का अपना अपना है, तो कम से कम जो बाबा नियम बनाया है 3:30 बजे उठना वो तो पक्का करिए, 3:30 बजे उठना ही है, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो, प्रभु मिलन की यही वेला है मेरी लाड ले जागो, तो अमृत वेला का महत्व अगर रखेंगे तो निद्राजित बनेंगे, आगे सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। देखो बाबा फिर क्या वरदान देते हैं। तो रात्रि भोजन हल्का करें, कम खाएं, सवेरे नाश्ता फुल आप खा लो पेट भर के, फिर दिन भर भागो जो करना करो। कई लोग रात सवेरे नाश्ता ही नहीं करते, 12 बजे तक पानी नहीं पियेंगे, रात को कुंभकर्ण जैसा खाएंगे, फिर कुंभकर्ण जैसा सोना पड़ेगा। तो तपस्वी बनने के लिए पहला काम ये करना पड़ेगा। ठीक है, अमृत वाला ठीक हो गया। एक दिनचर्या बनाइए, सारे दिन में मुझे क्या क्या करना। जिसकी दिनचर्या फिक्स नहीं है वो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा, सोते रहेंगे। हमें कितने घंटा सोना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर साहब को बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन बाबा ने हमें कहा है मेरे बच्चे दुनिया वालों के लिए 8 घंटा नींद चाहिए के लिए, लेकिन आप तपस्वी बच्चों के लिए आधी नींद की आवश्यकता है। ये साकार बाबा के महावाक्य है। अगर सारा दिन हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, हमारे मन में बहुत अच्छे विचार चलते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई तू मैं नहीं, तो बहुत कम नींद, पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं, तो 4 घंटा नींद सफिशियंट है। मैं हमारे जगदीश भाई जी को पूछता था कि भाई साहब कितना घंटा नींद करना चाहिए, उन्होंने कहा मेरे हिसाब से 5 घंटा तो नींद करना चाहिए, 4-5 घंटा। बाबा ने तो ये भी कहा है अंत में, मेरे बच्चे ऐसा भी समय आएगा तुम सभी को रात भर तपस्या करनी पड़ेगी, दिन में कहीं धूप में अपने हाथ को पिलो बनाना पड़ेगा, 4 मिनट अशरीरी अनुभव करेंगे तो 4 घंटा नींद बराबर हो जाएगा, अंत में एक एक को 10-10 की सेवा करनी पड़ेगी। वो कर्मातीत जब बनेंगे तब की अवस्था है, लेकिन अभी मैं कहूंगा हेल्दी रहने के लिए कम से कम 4-5 घंटा नींद तो चाहिए ही, साउंड स्लीप चाहिए, अच्छी तरह से एकदम डीप स्लीप हो जाए तो आपको फ्रेश लगेगा। क्योंकि हम कोई गुफा में बैठ के सन्यासी नहीं है, अकेले अकेले रह के तपस्या करने वाले नहीं है, हम सभी कर्मयोगी हैं, हम पब्लिक इंटरेक्शन में आते हैं। आप कम नींद करेंगे और कोई आएगा उसके सामने उबासी खा रहे हैं, उसके सामने झुटका खा रहे हैं, बैठे बैठे नींद कर, कई लोग तो चलते चलते भी सो जाते हैं, उसको मेडिकल भाषा में सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। नहीं, हम जब जागो तब सवेरा एकदम फ्रेश होके बिल्कुल एकदम अलर्ट, जब नींद करना है सो जाओ। भले हमें देखना है कि मुरली के समय नींद नहीं आनी चाहिए, योग के समय नींद नहीं आनी चाहिए, सेवा के समय नींद नहीं आनी चाहिए। रात को 3-4 घंटा सो जाओ, दिन में 1 घंटा रेस्ट करो। दिन में भी, क्योंकि हम जल्दी जागते हैं, तो दिन में अगर लंच के बाद 1 घंटा रेस्ट करते हैं तो आपको फ्रेश लगेगा, शाम का योग भी बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी उठा, दिन भर भी रेस्ट नहीं, तो रात्रि को शाम का योग फिर इतना पावरफुल नहीं होता है। इसलिए एक दिनचर्या बनाइए कि मुझे क्या क्या करना है, कब उठना है, कब खाना है, क्या करना है। आपकी फिक्स दिनचर्या होगी तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सूक्ष्म आलस्य अलबेलापन हमें समझना जरूरी है। बताया ना कि अगर हम पुरुषार्थ में, जैसे कोई व्यक्ति को कुछ बोला, फिर थोड़े समय के बाद पूछा कि क्या सुना, अगर वो नहीं बता पाता है तो हम कहने में क्या कहते हैं, क्या सोया होता है क्या? वो जागता है, आपको देख भी रहा है, सब कर रहा है, लेकिन सुना अनसुना कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति सोया है, उसके सामने कुछ भी बोलो सुनता है क्या? ऐसे ही हम मुरली सुन रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, लेकिन बाद में मुरली पूछा, मुरली में क्या सुना, कुछ भी, एक भी पॉइंट बता नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा, सोए हुए थे। बाबा ने क्या कहा, अगर हमको कोई अटेंशन नहीं रहा तो हम सोए हुए थे। ये सूक्ष्म आलस्य अलबेलापन है, नींद है। हमें देखना है बाबा को कितने, बाबा की मुरली को कितने ध्यान से हम सुन रहे हैं, कितने लगन से सुन रहे हैं। बाबा क्या करें, चात्रक समान एक एक बूंद बाबा के, एक एक महावाक्य आत्मसात करने के लिए हम अलर्ट हैं। अगर नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा अगर मुरली को एक बार सुना, बाबा ने कुछ कहा और सुना अनसुना कर दिया, तो बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता है, कभी जीवन में धारणा होगी नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, हाँ बाबा तो कहते, नेक्स्ट टाइम सुने फिर हाँ बाबा तो कहते। मान लीजिए बाबा कहते बच्चे जल्दी उठो, बाबा को याद करो सवेरे सवेरे। मान लीजिए आपने नहीं उठा, क्या नहीं सुना अनसुना कर दिया, अवज्ञा का बोझ चढ़ गया। फिर 15-20 दिन के बाद मुरली में आएगा कि बच्चे जो सवेरे जागते हैं उनका भाग्य ही श्रेष्ठ बनता है, बाबा तो कहते रहते हैं, फिर सोए रहेंगे, कभी धारणा होगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली को कभी सुना अनसुना नहीं करो, अगर सुना अनसुना करते हो तो वो भी आलस्य है, अलबेलापन है। जैसे बच्चे अलविले होते हैं ऐसे ये भी अलविलापन है, ये सूक्ष्म आलस्य अलविलापन है। मुरली टाइम पर नहीं पहुंचना ये भी आलस्य अलविलापन है। तो हमें सूक्ष्म बातें पुरुषार्थ में ये सूक्ष्म आलस्य अलविलापन चेक करने की आवश्यकता है, तो ही हम निद्राजित कर्मेंद्रजित प्रकृतिजित बन सके। नहीं तो ऐसे ही ठीक है चलती का नाम गाड़ी, ठीक है लोग जैसे कहते हैं कैसे हो, ठीक है चलती का नाम गाड़ी, ऐसे पुरुषार्थ में भी चलती का नाम गाड़ी। अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भाग्य खोएंगे लास्ट में, जैसे कुंभकर्ण विनाश को प्राप्त किया ऐसे ही प्रणश्यति विनाश, सब भाग्य खो देंगे। तो यही मौका है, बाबा के घर में आप सभी आए हो तपस्या करने के लिए विशेष रूप में, यहां प्रतिज्ञा करके जाइए जरा भी आलस्य अलबेलापन मेरे जीवन में ना हो, बाबा का जो आज्ञा है मुझे 100% पालन करना है, जरा भी सुना अनसुना नहीं करना है, आनाकानी नहीं करना है। दादियां बड़े जो हमको बाबा की जो रिप्रेजेंटेटिव है, बाबा जिनको निमित्त बन के बैठाए हैं, उनकी आज्ञा को भी हाजी करके चलें। मुख्य बात है तपस्या 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 तपस्या। अभी लास्ट समय है मेरे भाई और बहनों, सेवा तो हम सभी कर ही रहे हैं लेकिन तपस्या द्वारा कर्मेंद्रजित नहीं बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते हैं, तो भविष्य में भी स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो इसलिए तपस्या का सबसे बड़ा विघ्न है आलस्य और अलविलापन। तो आलस्य को त्याग करके यहां से जाइए, कुछ भी हो जाए मुझे एक्टिव रहना है, चुस्त रहना है, फुर्त रहना है। इसलिए सवेरे सवेरे रोज मैं कहूंगा एक्सरसाइज करो, बाबा ने कभी मना नहीं किया है, बाबा तो खुद एक्सरसाइज कराते। तन से अगर एक्सरसाइज रोज करेंगे तो देखना आपके मन से भी चुस्त रहेंगे और शरीर भी एकदम फिट रहेगा। शरीर बीमार है तो फिर आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। तो रोज एक्सरसाइज करना ही है मुझे, जैसे मेडिटेशन मन का एक्सरसाइज है, तन को भी एक्सरसाइज कराना है। इसी प्रकार जैसे तंदुरुस्त रहने के लिए हम अच्छा भोजन खाते हैं, उसमें भी अनाज कम करिएगा, फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, साग सब्जियां ज्यादा खाइए, दूध लीजिए, तो उसमें आप एकदम फिट रहेंगे। लेकिन हमारा मन का भोजन है हमारे बाबा का आध्यात्मिक ज्ञान। अभी बाबा के सिवाय और कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं सुना, तुम ही से सुनो, तुम्हारा ही सुनो। आज तक इतने सारे वेद शास्त्र पुराण कथा कहानियां सुन सुन के क्या हुआ, जीवन में कुछ मिला? कुछ नहीं हुआ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ सब मनोरंजन था वो सब। इसलिए अभी और कुछ नहीं सुनना है, बाबा का ज्ञान सुनना है, बाबा जो कहता है हाँ जी बाबा। तो ये है हमारा शुद्ध भजन। आज बाबा ने संगदोष के लिए कहा है, बिल्कुल इधर उधर बातें सुनना, फालतू बातें सुनना भी संगदोष है, वो भी हमारी बुद्धि को टाइम को वेस्ट करते हैं, भ्रष्ट करते हैं। इसलिए जैसे स्थूल अन्न पर हमारे पूरा अटेंशन है तो ही हम आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। योगी जो होता है सात्विक भोजन खाता है, जैसा अन्न ऐसा मन होगा। आलस्य विकार जो है, अगर बासी खाएंगे स्टेल खाएंगे तो नेचुरली आपको नींद आएगी, सुस्ती आएगी। विदेशी कल्चर है देखना, एक बार बना देंगे खाना, फ्रिज में रख देंगे, उसको गर्म कर करके गर्म कर करके कितने दिन खाते रहेंगे, गलत है। फ्रेश बना के बाबा को अर्पण करके ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन, अरे खुशी खुशी से गदगद होके बाबा का भोजन खाओ, देखो फिर देखना हो कितना शक्ति अनुभव होगा। इसलिए बासी चीजें नहीं खानी, फिर आलस्य का कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो स्थूल अन्न भी उतना ही ध्यान देना है, लेकिन बाबा जो ज्ञान हमें सुनाते हैं वो आत्मा का भोजन है, उस पर विशेष अटेंशन, विशेष अटेंशन। बाबा के एक एक महावाक्य को विशेष एकदम अटेंशन देके वो आत्मा का भोजन है, उससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप आलस्य अलविलापन विजय प्राप्त करेंगे। मैं तो यही शुभकामना रखूंगा, आप सभी बाबा के घर में आए हैं महातपस्वी बने, ब्रह्मा बाबा जैसे हमारे सामने उदाहरण मूर्त, हमारी दादियां उदाहरण मूर्त हैं, हमारी दीदियां उदाहरण मूर्त हैं, सारा जीवन बिता दिए त्याग तपस्या करके, ऐसे ही बने तो ही हम मंच पद के अधिकारी बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।
ओम शांति। वैसे आप जैसे अभी आपने बताया था कि कुछ लोग जो है सुबह 12 बजे तक कुछ भी खाते पीते नहीं है, तो क्या ये मेडिकली और फिजिकली सही है?
सुनिए, हम साइंस जो है एवर चेंजिंग, आज कुछ कहते हैं साइंटिस्ट, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, चेंज होता रहता है। लेकिन एक परमात्मा है जो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने, दोनों बाप दादा ने यज्ञ जब से शुरू हुआ हमको 4 बार खाने का नियम बनाया है। मधुवन में, ज्ञान सरोवर में, शांति में, 4 जाओ ध्यान देखना, मधुवन में अभी तक भी जाओ देखना, सबरे मुरली के बाद नाश्ता मिलता है, 8 बजे नाश्ता रेडी, 12-1 बजे तक लंच रेडी, 4 बजे हल्का सा, 4-5 बजे हल्का सा कुछ नाश्ता मिलता है, मुरमुरा मिलता है, कभी पॉपकॉर्न कभी क्या, और रात को 7:30 बजे के बाद 8 बजे डिनर रेडी। क्या भगवान को अकल नहीं है क्या? 4 बार क्यों खाना है, 2 बार खाओ। अरे मनुष्य मत सुन के क्यों चल रहे हो? अभी तक मनुष्य मत पर चलते चलते ही तो क्या हाल हुआ, दुर्गति हुई। भगवान जो कहते करो। मैं सच बता रहा हूं, मैं अभी तक बाबा के यज्ञ में जो बनता है वही खाता हूं, वही खाता हूं। और मैं हर साल अपना सब कुछ चेक करता हूं, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा सब कुछ नॉर्मल है। 30 साल में मेरा 1 किलो भी वेट नहीं बढ़ा है। जिसने देखा है मुझे पूछ लो, सभी जैसा जितना होना चाहिए उतना ही वेट मेरा ठीक है, कोई बीमारी नहीं। अभी तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। अरे भगवान हमको खिला रहे हैं, इसको छोड़ के भूखा मरो, नहीं खाना है पका हुआ अन्न, नहीं खाना है जाके और क्या खाना है, खाओ मरो, भगवान खिला रहे हैं। ये ब्रह्मा भोजन जिसको देवताएं तरसते हैं, दुख भंजन भोजन कहते हैं, इसको छोड़ के तुम जाके कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, करो आपकी इच्छा है। डॉक्टर क्या कहते हैं मैं नहीं कहूंगा आपको, लेकिन भगवान क्या कहते हैं हम भगवान का सुनना है। लेकिन बात है बाबा के बच्चे वही ब्रह्मा भोजन लेकिन आसक्ति से खाते हो, लोभ बस लालच से खाते हो, तो फिर माया का रूप हो जाता है, उसे माया खा जाती बीच में। हमें कितना खाना है समझ होनी चाहिए। मैं शुरू शुरू में जब आया, मैं जगदीश भाई जी को पूछा, क्योंकि मैं गीता पढ़ता था, गीता में सात्विक राजसिक तामसिक भोजन के बारे में वर्णन है। मैं बोला भाई साहब यहां तो समोसे बनते हैं, गुलाब जामुन बनता है, कचौरी बनता है, पुलाव बनता है, ये तो राजसिक भोजन है। तो जगदीश भाई ने मुझे क्या बोला पता है? अच्छा आपको सात्विक भोजन क्या है पता है ना? बाबा का घर कोई साधु संन्यासियों का रूखा सूखा आश्रम नहीं है, बाबा का घर मेहमानों का घर है। बाबा का घर, बाबा के बच्चे कोई 3 साल के बाद 4 साल के बाद आते हैं, बाबा तो खातरी करेगा ना। हम घर में भले रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो उसके लिए 2-4 आइटम तो बनाते हैं, ऐसे ही बाबा खातरी करता है। लेकिन आपको तो पता है ना सात्विक भोजन क्या है? आपको किसने कहा डेली गुलाब जामुन खाने के लिए? आपको किसने कहा समोसा डेली खाने के लिए? मैं सच बता रहा हूं, मधुवन में जितना मिलता है कोई राजा के घर में भी नहीं होगा। सवेरे सवेरे नलका खोलो चाय, नलका खोलो दूध, नलका खोलो कॉफी, किसके घर में होगा? इतने देंगे तो भी मुश्किल। अब नलका खोल के जितना पी जाओ, कोई मना करता है? इसका मतलब नहीं कि 4 ग्लास चाय पी लो। तो हमें कितना खाना है समझ होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, जितना मधुवन में जो सारा मिलता है हम वो खाते सारा तो कब से फुटबॉल बन जाते। मैं जितना खाता हूं 4 गुना खा सकता हूं, मैं सच बता रहा हूं, लेकिन नहीं खाता हूं। मुझे जितना खाना है, क्योंकि मेरा इतना हार्डवर्क है नहीं, मैं इतना खाऊंगा तो फिर तो क्या होगा। तो बाबा के बच्चे कर्मेंद्र जी अपना मुख का ये सबसे बड़ा शत्रु है। ये इसमें क्या बोलना है और क्या खाना है, ये दोनों को जो कंट्रोल कर लिया 100% कर्मेंद्रजीत हो जाएगा। हम क्या बोलना है कुछ भी बोल देते हैं, फिर संबंध बिगड़ जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कहां बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है हमें सीखना है। 2-1.5 साल में तो बोलना सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो सीखने के लिए सारा उम्र लगता है जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। और क्या खाना क्या पीना हमें सीखना है, ये दो अगर हम, योगी का सबसे पहला संयम वाक संयम और भोजन का संयम, ये अगर हो गया तपस्वी बन सकते, नहीं तो नहीं। तो 12 बजे तक बिल्कुल नहीं, सवेरे नाश्ता अगर नहीं करेंगे तो कोरोना फट से पकड़ेगा, बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो सवेरे सवेरे अच्छा नाश्ता करता है उसका बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और बुद्धि विकास होता है। बच्चों को देखा गया है, साइंटिस्ट रिसर्च है, जो सवेरे सवेरे अच्छा नाश्ता बच्चों को दिया जाता है तो उनका मेमोरी बहुत, पढ़ाई में बहुत होशियार होता है। तो इसलिए सवेरे नाश्ता करना है, नाश्ता छोड़ के 12 बजे तक पानी नहीं पीना है, गलत है बिल्कुल।